कि भक्तियों का साधन करते हुए अंतरेकरण निष्ठा और बाहर में नाम संकीर्तन, किंतु नाम संकीर्तन ऐसा हो जो अपने भावों को उद्दीपन करने वाला हो, जो हम चाहते हैं उसके अनुरूप होना चाहिए, और उनकी उन्हीं लीलाओं का ध्यान करते हुए हरिनाम संकीर्तन करें। ये नंबर दो हुआ। और तीसरा है भाई, जिस भावना तुम्हारी जैसी भावना है ऐसे ही भक्तों का संग करो, उनसे ही कुछ सुनो और कहो। स्वजाति आशय स्निग्ध रसिक तत्त्वज्ञ वैष्णवों का संग करो। सभी कुछ कर रहे हैं और ये यदि नहीं होगा तो नहीं होगा, ये प्रधान है पहले, वो लोग बाकी सबको करा देंगे यदि ऐसा संग रहेगा। उनके संग में वैसे ही नामों का कीर्तन, वैसे ही चिंतन और जो कुछ कराना है वो लोग करा देंगे। इसलिए ये तीसरा है बतला रहे हैं, जो ऐसे अपने भावों के अनुकूल स्वजातीय आशय सिंह। आशय मैंने क्या, हमारे अंतःकरण में जैसा भाव है उसी के अनुकूल, उसी को पुष्ट करने वाला अपने से उन्नत भागवत रसिक हो, ये जरूर होना चाहिए, नहीं तो लाख जन्मों में भी नहीं। ऐसा करने से प्रेम स्वतः सिद्ध हो जाता है, स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। जैसे कि बतलाया ना, साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरा वासी मुक्ति श्रद्धा सिमन सकल साधन श्रेष्ठ यही पंचांग कृष्ण प्रेम जन्मा यही अल्पसंग। अल्पसंग से ही हो जाएगा यदि अपराध न रहे। किंतु देखो थोड़ा सा प्रकट होने लगे तो उसको और प्रकट जानबूझ कर मत करो, क्या करो भरसक उसको छिपाने की चेष्टा। आंख में आंसू आ रहे हैं, थोड़ा सा कभी आने की भावना हुई और जोर से क्या करने लगे, थोड़ा सा आया ना तो उसको छिपा नहीं करके लोगों को दिखलाते हुए खूब जोर से पोंछने लगे, माने मुझे रुलाई आ रही, प्रकट मत करो। जत्न के साथ में इसको छिपाओ। और एक बतला रहे हैं, यह साधन उनकी क्रीड़ा भूमि में ही, लीला विलास भूमि में ही होनी चाहिए। वो कहाँ है, ब्रज में, ब्रज के निर्जन स्थानों में रहकर सदा अनुष्ठान करना चाहिए। ऐसा करने से निश्चय जल्द ही प्रेम प्राप्त हो जाएगा। जो जो बतलाया, क्या क्या बतलाया, पहला बतलाया हाँ ऐश्चर्य, एक तो लिख तो ऐश्चर्य, मार कांटा एक तो बोले दी ऐश्चर्य, ऐश्चर्य की रे ऐश्चर्य मैंने की पढ़ा लिखा अच्छे ले ऐश्वर्य ऐश्चर्य ना ऐश्वर्य ज्ञानहीन लौकिक सद बंधुवत उनसे कोई नाता जोड़े, विशेष करके तीनों में से कोई है। और दूसरा बतलाया नौधा भक्ति इत्यादि के रूप में उनका तन्नाम रूप चरितादि सुकृत नानु क्रमेण रसना मनसी नियोग, ये अपने मन को कृष्ण की लीलाओं से चिंतन करो मन के द्वारा और जीवा से भगवान नाम कीर्तन करो वैसे जैसा भाव है। और तीसरा स्वजाति स्निग्ध आशय व्यक्तियों का रसिक वैश्यों का संग हो और अपने भावों के अनुकूल भक्तों का संग, ब्रज भूमि में सदा अपने साधनों का अनुष्ठान करो। और एक बतलाया कि इस साधन में कर्म ज्ञान योग इत्यादि को दूर रखना चाहिए। इसलिए एकमात्र दैन्य होना चाहिए इसमें, दीनता। दीनता किसको कहते हैं? समस्त सद्गुणों से अलंकृत होने पर भी सब प्रकार के गुण हो, अत्यंत सुंदर हो, मधुरभाषी हो, बलवान हो, विद्वान हो, समर्थ हो, सब विषय में उसकी योग्यता है, तो भी क्या करे, अपने को असमर्थ, अधम, दीनहीन और अबोध मूर्ख समझे, सब गुणों से, सब गुणों का भंडार होने पर भी, समर्थ होने पर भी अपने को अत्यंत असमर्थ, जैसे सुबल सिदाम मधुमंगल जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय सब कुछ कर देंगे, ब्रह्मा जी की भी रचना कर सकते हैं, शंकर जी को भी वरदान दे सकते हैं, तो भी अत्यंत दीनहीन होकर के रहते हैं। ऐसे अपने को असमर्थ, अधम और निर्बुद्धि माने, ये अनुकूल है भजन के। जहां दंभ अहंकार आएगा, मैं विद्वान हूं, पंडित हूं, बुद्धिमान हूं, सुंदर हूं, समर्थ हूं, सब विषय में योग्य हूं, तो दीनता नहीं रहेगी, दीनता नहीं रहेगी तो ये भाव भी उड़ जाएगा। देखो, स्वयं कृष्ण भी अपने को दीन समझते हैं। ब्राह्मण, एक साधारण ब्राह्मण आएगा तो उनके चरणों में गिर करके उससे प्रार्थना करो। कोई भी कोई आया उसको सम्मान देते हैं, युधिष्ठिर को प्रणाम करते हैं, या अपने पूजनियों को, सबको प्रणाम करते हैं, अपने को दीनहीन समझते हैं। इसलिए इस प्रेम को लाने के लिए दीनहीन होना चाहिए। देखो, साधकों को एक जरूरी चीज है, ये साधन बतला रहे हैं, ऐसा यत्न करो, यत्न पूर्वक ऐसा करो जिससे कि किसी काम में, कहने में, बोलने में, कोई चेष्टा करने में, कोई विचार करने में दैन्य सब समय बना रहे, कहने में भी दैन्य रहे, करने में भी दीनता रहे, और विचार करने में भी दैन्य रहे, ऐसा स्थिर रहे दैन्य, इसके लिए चेष्टा करनी चाहिए। क्योंकि दैन्य और प्रेम एक ही पर्यायवाची शब्द है। दिन को कायम रखने की चेष्टा, दीनता को रखनी चाहिए, तो प्रेम भी स्थिर रहेगा। और जहां दीनता गई, दंभ अभिमान आया, मैं बहुत ही योग्य गुणी हूं, तो होगा क्या, जो संग हो रहा है किसी वैष्णव का, तो कोई थोड़ा सा अनादर कर दिया तो क्या होगा, तो धोकर क्या, अब हम, हमारा आदर नहीं, इतना मैं गुण आदर नहीं करते, बस सदा के लिए संग दूर हो जाएगा। जैसे मैं बहुत समझता हूँ कि मैं बहुत अच्छा पाठक हूँ, मैं बहुत अच्छा वक्ता हूँ, मैं बहुत अच्छा अर्चक हूँ, मैं बहुत अच्छा कीर्तन करने वाला हूँ, मैं बहुत अधिक सुंदर गुणी हूँ, तो जब उसका आदर नहीं होगा तो वो कहेगा जी आदर नहीं, हम तो जहाँ जाएंगे आदर करेंगे, बस वैष्णव का संग छूट जाएगा। इसलिए दीनहीन होकर के दीनता बरकरार रहे, स्थिर रहे, ऐसा काम करना चाहिए। इसलिए बोलने से, करने से, कहने से, विचार करने में दीनता की सब समय रक्षा होनी चाहिए। वास्तविक दैन्य तो प्रेम की परिपक्व अवस्था में ही होता है। यथार्थ जो प्रेम होता है कब होता है? प्रेम की परिपक्व अवस्था ही में दैन्य आता है। जैसे श्रीमती राधिका जी को, गोपियों को, नंद बाबा को, यशोदा जी को, नंद बाबा श्रेष्ठ हैं या उद्धव श्रेष्ठ हैं, किंतु अपने को साधारण दीनहीन मूर्ख समझते हैं नंद बाबा। कृष्ण को शिक्षा देंगे, शासन भी करेंगे, प्यार भी करेंगे, किंतु उद्धव इत्यादि नारद जी, उद्धव, अक्रूर और कोई दूसरा आ जाएगा तो उसको खूब सम्मान करते हैं, माने ये कुछ नहीं। अच्छा तू कह रहा है जो भगवान है तो ठीक है, उनके चरणों में हमारी मति लग जाए, किंतु कृष्ण से कहेंगे कि नहीं? कृष्ण से नहीं कहेंगे। इसलिए अपने में दीनता लगनी है, दीनता भूषण है। हम लोग के साधन भजन में यही चीज गड़बड़ करता है। हम अभी सब प्रयास नहीं करते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों में अभिमान आ जाता है। वैष्णव का संग और साधन भजन छोड़ने के लिए भी क्या बात है, ये सब छोड़ो, और भगाड़ में जा करके मरते हैं। कर्मी ज्ञानी योगियों की आज जूठा खाते हैं, किंतु वैष्णव के यहाँ रह करके भजन नहीं करें, अभिमान आ जाता है। इसलिए दीनहीन बन करके रहना चाहिए। नारद जी बहुत सब सुंदर सुंदर बातें करें, किंतु धारण करना सहज नहीं है भाई, सहज भी है तो दन्य प्रेम की परिपक्व अवस्था में ही होता है। जैसे कृष्ण के वियोग में गोपियों ने कहा कि हम लोगों का ये दुर्भाग्य है, हमारा कर्म खोटा था, पुण्य का बल नहीं थी, हमको सुकृति नहीं है। कृष्ण बड़े दयालु हैं, बड़े उदार हैं, बड़े भक्त वत्सल हैं, किंतु हम लोगों ने अपने कर्मों से उनको गंवा दिया। यह दोष किसका है? हमारा दोष, हमारा कर्म ही ऐसा था। इस प्रकार से दीनहीन होकर के कहते हैं, जितना ही दंड अधिक होगा प्रेम उतना ही बढ़ेगा, और जितना ही करनी कथनी और विचार में अभिमान दंभ आएगा उतना ही प्रेम दूर हो जाएगा। ये एक दूसरे के पूरक हैं, प्रेम और दंड। देखो मैं क्या कहूं, मुझे तो प्रेम नहीं है, नारद जी कह रहे हैं। प्रेम का स्वरूप कौन जानता है? प्रेम ही जानता है। तब दूसरा कोई नहीं जानता प्रेम का स्वरूप क्या है। प्रेम का स्वरूप क्या है? कभी उल्टा भी दिखाई पड़ता है, इसलिए जो उसका स्वरूप लक्षण है उसको तो कोई व्यक्त नहीं कर सकता, वो तो प्रेमी के हृदय में रहता है। उसके तटस्थ लक्षणों को कुछ बतला रहे, किंतु तटस्थ लक्षण दे करके उसका विचार नहीं किया जाएगा, विचार होता नहीं है। गाली देना ये क्या चीज है? गाली देना तो ये तो शत्रुता का कारण है, क्रोध, अमर्ष, ईर्ष्या, असूया, गर्व, अहंकार, ये सब क्या है? दोष है ना, सभी दोष है। गर्व करना, छल चातुरी करना, गर्व, ईर्ष्या, असूया, मात्सर्य, द्वेष, क्रोध, ये सभी क्या चीजें हैं? ये दोष हैं। किंतु प्रेम में ये सभी चीजें अपनी पराकाष्ठा तक भी उसको देखा जा सकता है। उनमें छल चातुरी भी है। जैसे एक समय कृष्ण बंसी बजा रहे हैं गोवर्धन के ऊपर, बड़ी सुंदर मद बंसी की तान छेड़ दी। उस समय में ललिता जी भी सुन रही हैं, सखियां भी सुन रही हैं, बड़ी उत्कंठा हो रही जी, हम कृष्ण से मिले। पद्मा जी वहां थी, पद्मा जी दौड़ करके उधर ही जा रही हैं। देखा जी सारी ये तो कृष्ण के पास में दौड़ करके जा रही है। तो उन्होंने उसको कहा, अरे सखी कहाँ जा रही है? ललिता जी क्यों जा रही है, कहाँ जा रही है? देखो हवा चल रही है, और हवा से कीचक माने बांस, बांसों के छिद्रों में हवा प्रवेश करके बंसी जैसी बज रही है, उसको सुनकर के पशु ही क्यों दौड़ सकते हैं, पशु अबोध। तुम तो बुद्धिमान है, तुम क्यों दौड़ रही है। तो उसने, और गोवर्धन के ऊपर में मेघ हैं, उन मेघों को श्यामल देख करके कोई श्याम की कल्पना कर ले तो वो पशु ही है। अब वो जो जा रहे थे इनकी बात सुन करके ठिठक गई, खड़ी हो गई। तो ये सचमुच हमको ये मूर्ख बना रही है, तब हम जाएंगे नहीं, सचमुच में ये बांस ही बज रहा होगा, ये जो कृष्ण की जो मैं धारणा करूँ आकाश का मेघ ही होगा। फिर तो वहां से लौट गई, इधर में वो आकर के श्रीमती राधिका जी को उनके पास में, ये क्या चीज है, छल है ना, छल भक्ति में लगाया जाएगा, किसी को छगना चाहिए, छल करना चाहिए। इसी तरह से द्वेष और बतलाए असूया अमर्ष पर के दोष में गुण और गुण में दोष देखना, ये सब एक ही चीज नहीं है। ऐसा मालूम होता है कि असूया, ईर्षा, द्वेष, मासर्ज्य इत्यादि अलग अलग एक ही चीज है, किंतु एक चीज नहीं है, इसमें सब अंतर। सब ब्रज के लीला में चरम उत्कर्ष के रूप में वहां है। इसलिए तटस्थ लक्षण के द्वारा हम यदि विचार करेंगे, जैसे अरे ये प्रेम का अभाव है, तो इसको नहीं समझ सकते। इसलिए केवल तटस्थ लक्षण के द्वारा, स्वरूप लक्षण तो भाई जिसको होगा वही समझेगा, और तटस्थ लक्षण कम समझेगा, उसका प्रेम के तत्व को जानने वाले हैं वो समझेंगे, साधारण आदमी नहीं समझ सकता। ये याद नहीं आ रहा सब। ईर्ष्या किसको कहते हैं, ईर्ष्या में दिख रहा है, ईर्ष्या भी वहां होती है। देखो ईर्ष्या, कृष्ण राधा जी और ललिता जी के साथ में है, प्रसन्न होकर के उन्होंने अपना गले का सुंदर सोने का हार पहुंचा दे दिया राधा जी के गले में, और फूलों का हार लेकर के और चंद्रावली जी के केश में बंधन कर दिया। ये तो आदर करके ही दिया, किंतु पद्मा जी को अब ईर्ष्या हो रही है। जब तू डूब करके मरती नहीं, इनको तो हार पहना दिया और तुमको यहाँ पर केस में थोड़ा सा पुष्प की माला दे दिया, और तुम अभी तक जीवित हो, उनके प्रति ईर्ष्या है। तो ऐसे ऐसे ये सब चीजें हैं, तो इसको कौन जानेगा, वही प्रेमी समझ सकता है। तटस्थ लक्षण के द्वारा सब समय विचार नहीं, किंतु हम लोगों को तटस्थ लक्षण के अतिरिक्त तो कोई उपाय नहीं। तटस्थ लक्षण है कि प्रेम होते ही चित्त आर्द्र हो जाएगा, आर्द्र माने द्रवीभूत होगा। हरि कथा सुनने से, भगवान का नाम करने से चित्त द्रवित होगा, हम लोग का नहीं हो रहा है, यश विग्रह को देखने से। महाप्रभु और उनके भक्त लोग होते तो देख करके मूर्छित हो जाते, हृदय तरल हो जाता है। हम लोग का नहीं हो रहा है, इसका मतलब है जो तरह तरह पूर्व जन्मों के अपराध इत्यादि है, इसलिए चित्त कठोर है। यह दोष संग में नहीं बल्कि हम में है। तो तटस्थ लक्षण में अनुभव, सात्विक, व्यभिचारी, इन भावों का प्रकाश, ये सब तटस्थ लक्षण हैं। जैसे सात्विक लक्षण, शुद्ध सत्व में अंतर में जब कोई भाव प्रकट होता है, तो वही भाव जब शरीर में उत्पन्न होता है उसको सात्विक भाव कहते हैं, उसका अवबोधक है। चितस्थ भावों का, चितस्थ माने शुद्ध सत्व के भावों का अवबोधक, अव मन माने पहले वो होगा तब ये इसको बोध कराता है, इसलिए इसको सात्विक भाव कहते हैं। संचारी भाव, स्थाई भाव कहाँ की चीज है, आत्मा की चीज है। स्थाई भाव में की तरफ में जो बढ़ चलते हैं उसको भी उन्नत बनाते हैं, अपने भी उन्नत होकर के फिर उसमें मिल जाते हैं, इनको क्या कहा है, संचारी भाव। संचारी भाव भी शरीर पर ही देखे जाते हैं। इस तरह से ये सब तटस्थ लक्षण है। किंतु वो भाव कैसे पैदा वहां पर हुआ ये प्रेम ज्ञान। देखो जब प्रेम हो जाता है तो उसका भी ये तटस्थ ही लक्षण एक और बतला रहे हैं। शीतल जन जमुना का शीतल जमुना जल दावानल के समय समान अत्यंत भीषण ज्वलन युक्त हो जाता है जमुना का पानी, और विष अमृत की तरह, अमृत विष की भांति मृत्यु सुख के सदृश और जीवन धारण करना अत्यंत तो दुखदायी प्रतीत होता है प्रेम होने। या प्रेम आनंद युक्त है ना विष युक्त समझा नहीं जाता, जिसको हो जाता है उस प्रेम से प्रेमी अपने प्रभु के संयोग और वियोग को भी साक्षात रूप से विवेचन नहीं कर सकता। जब भी मिलन हो रहा है कि वियोग हो रहा है, उस प्रेम की ये सब तटस्थ लक्षण है। या प्रेम उसके लिए महा आनंदपूर्ण है अथवा शोकमय है, शोकमय ये समझा नहीं जा सकता, यह प्रेम उत्पन्न हो जाए। उसमें वो साधक उन्मत्त हो जाता है, लोगों की दृष्टि में उन्मत्त हो जाता है। इस प्रेम के बिना केवल नौधा भक्ति प्रभु को सुख नहीं देती, प्रीति का कारण नहीं बनती। नौधा भक्ति यदि कोई नाम संकीर्तन श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन पाद सेवन अर्चन बंदन करे और प्रेम नहीं है ऐसा, तो प्रभु को न सुखम विद्युते सुखम स्यात्, है ना? क्या है, यदि भूख और प्यास नहीं है, नानोपचार कृत पूजनम आर्त बंधो, यदि नाना प्रकार की पूजा करते हैं हे आर्त बंधो और उसमें आरती रूपी प्रेम नहीं है, तो प्रभु के हृदय में आनंद नहीं होगा। इसलिए जैसे लवण के बिना साग और भूख के बिना सुंदर भोजन और बिना अर्थ का शास्त्र पाठ कर रहे हैं, भागवत पाठ कर रहे हैं और उसका अर्थ नहीं श्लोक का समझते, और एक आदमी उसके अर्थ को समझ करके करता है तो उसमें उसको आनंद आएगा, इसको आनंद नहीं आएगा। और बिना फल के बगीचे में, जैसे बगीचा है ना, उसमें एक आम पका हुआ है कि 10 आम पके हुए हैं, आम के पेड़ उसमें फल लगे हैं और सब पके हुए हैं, अब हवा लगने से गिरने वाले, वो बगान कितना सुंदर सुहावना सरस और मधुर होता है, सब लोग उधर ही दौड़ते हैं। और बगीचे में आम नहीं है, फल पके हुए नहीं हैं, तो वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर उनको अच्छा नहीं। इसी प्रकार से लवण के बिना साग, भूख के बिना सुंदर भोजन, अर्थ के बिना शास्त्र और फल के बिना बगीचा सुखचार नहीं होते हैं। उसी तरह से प्रेम के बिना ये नौधा भक्ति, 64 प्रकार की भक्ति, पंचधा और त्रिधा भक्ति भी सुख का कारण नहीं होती। अब प्रेम अपने बस की बात नहीं है, ये प्रेम कर लें निकाल लें, ये भगवान के ऊपर में। मैंने नारद जी करें, मैंने ये प्रेम के साधारण कुछ लक्षण बन, साधारण जिसको सभी लोग समझते, असाधारण मैंने नहीं जो है वो नहीं बतलाया। असाधारण कौन जानते हैं, वो प्रेमी भक्ति लोग जानते हैं। एक प्रेमी व्यक्ति कहता है कृष्ण से आप चले जाइए, और एक प्रेमी व्यक्ति नहीं है साधारण आदमी है, वो कह रहा है जैसे चले जाइए, दुर्योधन कह रहा है जे चले जाइए, और गोपियां कह रहे हैं जे चले जाइए। दोनों में इस चले जाने के शब्द में अर्थ में कोई अंतर है, भाव में अंतर है, कौन समझेगा? साधारण आदमी नहीं इसको समझ सकता, इसको प्रेमी व्यक्ति ही समझेंगे। कृष्ण प्रेमी है ना, इसलिए समझ जाते हैं, किसी का सुन करके जाओ सुखी हो जाते हैं और चले नहीं जाते, जाते नहीं कहने पर भी। और कोई अत्यंत ऊपर से प्रेम दिखला करके कहता है जैसे चले जाओ, चले जाओ, यहाँ तक कहेंगे जो रह जाओ तो भी चले जाएंगे। इसलिए इस प्रेम को वर्णन कर रहा, मेरे सामर्थ्य से बाहर है। इस प्रकार से नारद जी उनको समझाया और उन्होंने उनको द्वारका जाने के लिए, पुरुषोत्तम छात्र में जाने के लिए कहा। उद्धव जी ने कहा, प्रभु आप इसको पुरुषोत्तम धाम में जाने के लिए क्यों कह रहे हैं, ये उद्धव जी कौन है? नारद की तो बात ही क्या, उग्रसेन की बात क्या, ये कृष्ण को भी परामर्श देने वाले हैं, इसलिए बड़े उत्कृष्ट बुद्धिमान हैं और मंत्री हैं, सलाह देने वाले। इसलिए नारद जी को सलाह देते हैं, प्रभु आपने ये क्यों कहा उसको जाने के लिए, पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाने के लिए क्यों कहा? इसको आप वृंदावन में क्यों नहीं भेज रहे हैं? पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाने से इसका साधन नहीं बनेगा और प्रेम उत्पन्न नहीं होगा, इसको वहां ना भेज करके इसको जहां पर यथार्थ में दीनता उत्पन्न हो, प्रेम उत्पन्न हो, उसको ऐसे वृंदावन में भेजिए, मत भेजिए उसको पुरुषोत्तम धाम, क्योंकि वहां जाने से 56 बार तो उसको भोग प्रसाद मिल जाएगा खाने के लिए और 12 महीने में 13 पर्वन है, पर्व उत्सव होते रहते हैं, 1 महीने के अंदर में कितने रोज रोज उत्सव होते रहते हैं और खाने पीने की सुगमता रहती है और जगन्नाथ जी का रोज दर्शन प्रतिदिन 10 बार 20 बार करो, उससे कभी भी दीनता नहीं आएगी, यह दीनता का विधायक साधन नहीं हो सकेगा खाने पीने उत्सव में लगा, इसलिए उसको वहां पर मत भेजिए, वहां पर उसका ये प्रेम उत्पन्न नहीं होगा, आप वृंदावन में भेजिए, क्योंकि वृंदावन में जब जाएगा तो जमुना को सुखी देखेगा, कृष्ण के समय में जैसे उसमें पानी रहता था, उसमें कमल खिलते थे, लहरें चलती थीं, बहुत ही सुगंध उसका पानी निर्मल था, कृष्ण के विरह में सब कुछ उल्टा हो गया है, वहाँ पानी भी सूख गया है। अभी देखिए यमुना की क्या दशा है, अब तो बरसात में कुछ पानी भी आ गया, किंतु यमुना सूखी रहती है, क्षीण हो गई है, कृष्ण का दर्शन वहां नहीं होगा, गोवर्धन जाएगा कृष्ण से मिलने के लिए, खोजेगा कृष्ण कहाँ है, गोवर्धन सुना पड़ा हुआ है, टुकड़े टुकड़े होकर के जमीन के अंदर में वो चले जा रहे हैं, बिरह की छाया वहां मिलेगी। नंदगांव में जाएंगे, पहले वन जंगल भी थे वो भी अब कट रहे, आजकल हरिणों को भी नहीं देखेंगे, मोर भी पहले से बहुत कम गए। इस तरह से वहां जाकर के कृष्ण के विरह में तड़फेगा चारों तरफ में और दीनता आएगी, हा कृष्ण कहाँ है, हे राधे तुम कहाँ, जैसे हमारे गोस्वामी, हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो श्री गोवर्धन कर पाद पतले, कहीं उसको शांति नहीं आएगी, कहीं नहीं आएगी। माँ धुकरी मांगने भी जाएगा तो कोई देगा कोई नहीं देगा, कोई झिड़केगा कोई कुछ करेगा, दीनता अपने आएगी, हम बहुत दीन ही, अपने को छिपा करके भी रखेगा, इसलिए यहाँ पर दीनता और प्रेम दोनों होने की संभव और वहां पर नहीं रहेगी। कहा जैसे तुम तो कृष्ण को परामर्श देते हो, इसलिए तुमने सच ही कहा है। अब इसको आज अच्छा भाई तुम वहां पर मत जाना, अब तुम यहां से वृंदावन में तुम चले जाओ। इस तरह से उनको उपदेश दे करके वृंदावन जाने के लिए कहे। उद्धव जी उनको संग में लेकर के अपने घर में आए। फिर उन्होंने विचार किया गोप कुमार ने, और विचार करके सोचा जे क्या करें। उद्धव जी ने कहा जे जब आप पर कृपा होगी तो खुद ही आपको पहुंचा देगा। बस उन्होंने वहीं पर बैठे बैठे देखा द्वारका के अंतर्गत ही, न जाने में कहां जा रहा है। और आकर के देखा जहां ये कुंज है, इसी कुंज में मैं आकर के उपस्थित हुआ है। मैं वहां से निकल करके यमुना की तरफ गया, इधर गया, कृष्ण को कहीं नहीं देखा। धीरे धीरे मेरे अंदर में दीनता आने लगी, हृदय द्रवित होने लगा, कृष्ण के विरह में तड़पने और रोने लग गया। इस तरह से कुछ दिन होते 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 मेरे अंदर में बहुत दीनता आई और प्राय रोता रहता। उस समय मैं नहीं समझता कि इस भक्ति में आनंद है कि केवल दुख ही दुख है, शोक है। इस प्रकार से एक दिन मैं इसी कुंज के पास ही में कहीं विलाप कर रहा था, इतने में देखा श्याम सुंदर को बंसी बजाते हुए हमारे निकट आ रहे हैं। मैं लपक करके दौड़ा उनको पकड़ने के लिए, और वो पीछे पीछे हटते हटते अंत में अंतर ध्यान। मैं मूर्छित होकर के गिर पड़ा। थोड़ी देर के बाद में होश आया। इसके बाद में मुझसे जब रहा नहीं जाता, विलाप करता है। कभी कभी मैं उसी अवस्था में देखता जब वो कभी मिल गए, आनंद से मैं हंसने लगता और इस प्रकार से भावनाएं होती। एक तरह से मैं पागल जैसा हो गया। एक दिन मैं बैठा था, इतने में जब उनको देखा उनके पीछे दौड़ा, मैं यमुना के अंदर में गिर पड़ा। जब गिर पड़ा तो देखा जो यमुना की धारा में प्रवाहित हो रहा हूं, और उसके ऊपर मैं उठा और उठते उठते न जाने देखा, जब होश आया था देखा जो मैं बैकुंठ में। थोड़ी देर बाद मैंने देखा जब बैकुंठ पार करके, अयोध्या पार करके, द्वारका पार करके मैं ब्रज में पहुंच। ब्रज में पहुंच करके देखा, जब वहां पर पहुंचा पहले मथुरा में पहुंचा। मथुरा में पहुंचते ही मुझे खबर लगी कि कंस का राजत्व भी चल रहा है और कृष्ण के मारने के लिए षड्यंत्र कर रहा है और वैष्णव पर अत्याचार कर रहा है। मैं जल्दी से यहां से स्नान करके विश्राम घाट में और भागा और वृंदावन में गया। देखा जो सभी पागल की तरफ में कोई चीज ढूंढ रहे हैं। एक वृद्धा मिली, वृद्धा से पूछा कहीं कृष्ण को श्याम सुंदर को देखा, तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। घूमते घूमते इस तरह से थोड़ी देर के बाद में किसी ने बतला जे गोचारण करके आ रहे हैं, देखो उस रास्ते पर चले जाओ। कृष्ण गोचारण करके आ रहे थे, मैंने पहले ये सब वर्णन किए हैं हम लोग, अब सूत्र में बतला रहा। कृष्ण की बंसी ध्वनि, गायों की हम्बात ध्वनि और बछड़ों का रंभाना, गायों का रंभाना और सिंगा, ये सब सुन करके एकदम सब ब्रजवासी लोग उनको दर्शन करने के लिए उत्कंठित होकर के रास्ते में आए। मैं भी उनके साथ में वहां आया। कृष्ण जब हमारे पास में आए तो सबको छोड़ करके हमको पकड़ करके और आलिंगन किया। जिसमें उन्होंने पकड़ा, मैं भी प्रेम में मूर्छित होकर के गिर पड़ा और वो भी मूर्छित होकर के गिर पड़े। हमको ऐसा भान उस मूर्छित अवस्था में लगा, सब लोग आकर के हमें देख करके जी ये कहीं कंस का तो दूत तो नहीं, ये कौन है, इसको देख करके हमारे प्रभु कृष्ण इस प्रकार की अवस्था में आए। कुछ देर के बाद में बलदेव प्रभु जी आए और लोग सब ब्रजवासी आए, नंद बाबा यशोदा जी आए, बड़ी मुश्किल से कृष्ण को उठाया और ये आगे उठाया, उठा तो इसको लेकर के बलदेव प्रभु जी ने कहा जी कृष्ण को गलबहिया डाल करके ऐसा करो और कृष्ण कृष्ण सखा सखा कहो। उसने किया, थोड़ी देर बाद में कृष्ण ने खोला आँख, खोलने के बाद में इधर उधर देखा, उनको बहुत संकोच, अरे ये कौन सब इतना हमको घेरे हुए हैं, उनके प्रेम का संकोच हुआ। फिर इसको अपने हाथों में हाथ लेकर के यशोदा जी के भवन में गए, उन्होंने जैसे अपने स्नान किया इनको भी स्नान करवाया, खिलाया पिलाया यशोदा जी ने। और वहां पर इसी तरह से कुछ दिनों के बाद में अक्रूर आया और कृष्ण को लेकर के बलदेव जी को चला। स्वरूप ने पूछा, उनके जन शर्मा जी ने पूछा, जब कृष्ण चले गए वहां तो तुम क्या कर रहा था, कहाँ था? और तो मैं वृंदावन में ही रहा। कोई भी भक्त कृष्ण के चले जाने पर भी उस स्थान को वृंदावन को नहीं छोड़ना चाहता, यही उस स्थान की खूबी है। मैं भी नहीं गया, प्रतीक्षा कर रहा था। कुछ दिनों के बाद में कंस को मारने के बाद में भक्तों की यह दशा सुन करके कृष्ण पुनः वहां पर लौटे। फिर इसी तरह से उन्होंने काली दमन और जितनी भी लीलाएं हैं कंस का मारना इत्यादि फिर से किया और फिर वहां गए, फिर लौट आए। मैं ये कह रहा हूं किंतु वहां पर हमको अनुभूति नहीं थी, यह पहली बार है कि यह कितनी बार हो चुकी, कितनी बार हो चुकी इसका कोई दिमाग में नहीं आता उनका, वहां के भक्तों ये पहली बार कृष्ण गए हैं और उसको मार करके फिर अभी लौट रहे हैं या पहली बार जा रहे हैं, ऐसे ही उनकी भावना बनी रहती। पता है तीन महीने का ये केवल विरह, किंतु उनको पता नहीं ये पहली बार है कि कौन सा है, अर्थात पहली बार ये जा रहे हैं ऐसी भावना। नहीं तो कृष्ण बार बार कंस को मार रहे हैं, मथुरा जा रहे हैं, तो लीला के लिए गड़बड़ी हो जाएगी, इसलिए वहां पर प्रतीति नहीं होती। उनको मालूम हो रहा है जैसे ये कृष्ण गए थे, स्वप्न में हम लोगों ने ऐसा देखा, ऐसा भान हो। अब यहां से कह रहे हैं वो उनकी लीलाओं में रहने लगा। एक दिन अभी कल राधा जी ने हमको आदेश दिया कि हमारा एक भक्त आ रहा है, वृंदावन में आएगा, तुम जाओ उसको कृपा करके हमारी प्राप्ति का उपाय उसको बतला करके जल्दी से हमारे पास में ले आओ। कृष्ण उसके लिए बड़े चिंतित हैं, आग्रह उत्कंठित हैं, इसलिए मैं आया इसी जगह, तुम्हारे लिए ही मैं आया। और मुझको बड़ी खुशी है कि राधा जी ने तुम्हारे लिए आदेश दिया तो वो तुम कितने उनके प्रिय हो, इसलिए मैं यहीं पर तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रहा था और तुमको इतना सा बतलाया। तुम्हारे अंदर में तो प्रेम होना चाहिए, हमने तो ऐसे चीजों को बतलाया जो मुझको भी पता नहीं, हमने देखा नहीं वो लीला, किंतु कभी स्वप्न में, कभी स्फूर्ति में, कभी कृष्ण की कृपा से प्रत्यक्षवत उन लीलाओं का अनुभव कर रहा हूं और तुमको मैंने बतलाया है। अच्छा, तुमको प्रेम नहीं हो रहा है, चित्त द्रवित नहीं हो रहा है, बस अपना हाथ उसके ऊपर में रखने के साथ ही मैं एकदम कृष्ण 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 कह करके एकदम रोने लगा। जब रोने लग गया तो उसको प्रेम। अब वहीं पर यह करें, यह सत्संग की महिमा है, बिना साधु का संग से नहीं होगा, सत्संग भी भगवान की कृपा से ही और सत्संग की कृपा से कृष्ण की कृपा, किंतु सब समझ समझ आ जाए भक्तों की कृपा के अनुगमन में ही कृष्ण की कृपा होती है, अनुगामी है कृष्ण की कृपा, भक्तों के कृपा की अनुगामी नहीं है। इसलिए भक्तों से छोड़ करके भगवान मिल जाएंगे हमारे साधन भजन से, ये कभी संभव पर नहीं है। इसलिए जितने ये सब बतलाए गए उन सबको हम लोग आचरण करने की चेष्टा करें। अब वो सत्संग की महिमा बतलाते हुए भक्ति रसायन का वर्णन उन्होंने किया, सनातन गोस्वामी ने इसको उद्धृत किया है। आज हम लोगों की कथा संक्षेप में हमने समाप्त की, कल हम लोग इसकी आरती उतार करके ग्रंथ पूजन करके अभी समाप्त करेंगे। किंतु देखो, मैं तो समझता हूँ कि भागवत श्रीमद् भागवत जो है उसे भी ये रसीली कथा है। सिद्धांत को जानने के लिए, साधन में प्रविष्ट होने के लिए भागवत ने स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं कहा है कुछ, उन्होंने कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासत्वात् इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति लखना क्रियेत भगवता अध्याय तन्मन्य यही सब कथाएं कही, किंतु इसमें खोल करके ये सब बातों को बतलाया गया है। इसलिए इसको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इनके भावों को ग्रहण करना चाहिए। इन्हीं सब चीज़ों के लिए हमारे रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामी सिंधु उज्ज्वल निन्मणि और दूसरे दूसरे ग्रंथों का ये प्रकाश किया है। इस तरह से भक्ति में उत्तरोत्तर हम लोग बढ़ते रहे। कल आप लोग ऐसा कर सकते हैं, हमारे ब्रह्मचारी लोग तो करेंगे ही, आप लोग भी एक एक बत्ती लेते आएंगे या कर्पूर ठाकुर जी को लगाएंगे, हम लोग आरती पूजन और कर ही क्या सकते हैं। ग्रंथ की कृपा हम लोगों के ऊपर में हो, सनातन गोस्वामी जी कृपा करें, इस तरह से कर करके।